ईक्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पञ्च परमेष्ठि भगवान् की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की प्रश्न नंबर 15 नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? नमोकार मंत्र के कतिपय पर्यायवाची नाम निम्नलिखित हैं। ये लगभग 9-10 हैं क्या? 10 नाम दिए। ये नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम हैं। मूल मंत्र क्यों नाम पड़ा? सभी मंत्रों का मूल यानी जड़ आधार, सभी मंत्रों के उत्पत्ति का स्थान होने से इस नमोकार मंत्र को मूल मंत्र कहा है। क्योंकि सारे मंत्र जो बनते हैं पंच परमेष्ठियों के नामों से ही बनते, और कोई भी मंत्र की उत्पत्ति होती है तो नमोकार मंत्र को छोड़कर मंत्रों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि नमस्कार मंत्र है। किसी भी मंत्र में जब हम नमस्कार करते हैं तो उसमें पूज्य पुरुष होते, पूजनी अवस्था जिस आत्मा के भीतर होती है, ऐसे वंदनीय आत्मा को मंत्र के माध्यम से हम स्मरण करके नमस्कार भी करते हैं। क्यों करते हैं? मंत्रों को क्यों जपा जाए? क्या लाभ है? मंत्रों को जपने का अर्थ होता है हम मंत्र में रहने वाले पवित्र आत्मा के समान अपन भी बने। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। वंदना करने वाला, नमस्कार करने वाला वंदक पुरुष यदि किसी की वंदना करता है तो जिसकी वंदना कर रहा है वैसा ही वो बनने का लक्ष्य रखता है, ध्येय लक्ष्य कि हमको भी वैसा बनना है। तो वैसा बनने के लिए नमस्कार करने से कैसे बनेंगे? नमस्कार करने से हमारे कुछ पाप कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं और निर्जरित पाप कर्म के कारण हम उन जैसे बनने के मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। उन जैसा बनना किसके माध्यम से संभव? कर्म निर्जरा के बिना तो संभव नहीं है, इसलिए हम पंच परमिष्टि नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। कोई भौतिक सिद्धि के लिए इस जाप को जपता है तो भौतिक सिद्धि भी हो सकती है, दोनों तरफ यह मंत्र काम कर सकता है, किंतु भौतिक सिद्धि को करने वाला महापुरुष नहीं बनेगा, वो संसार परिभ्रमण करेगा, आत्मा को छोड़कर, आत्मसिद्धि को छोड़कर बाकी अन्य भौतिक सिद्धि के पीछे लग जाएगा तो उसकी आत्मा कर्मों से बंधती जाएगी, कर्म निर्जरित नहीं हो पाएंगे। तो भौतिक सिद्धि के लिए भी यह नमोकार मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? तो कल बताया था ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रिरंच समान। धर्मात्मा का जाप देते हैं तो उस धर्म का जाप देते, हम उस धर्म का जाप देते। धर्म रत्नत्रय होता है, चार परमिष्टियों में रत्नत्रय प्रधान धर्म है और एक परमिष्टि में वस्तु का मूल स्वरूप शुद्ध स्वभाव रूप धर्म पाया जाता है, रत्नत्रय उसका साधक है। दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को साधे बिना हम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसको वत्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो शुद्ध स्वभाव है उसको धर्म कहा है, वो उत्कृष्ट धर्म है। नीचे के धर्मों को करने के उपरांत वस्तु का स्वभाव भी शुद्ध हो सकता है। नीचे के धर्म तीन होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों धर्म हमारे लिए अशुद्ध दशा से मुक्त कराकर शुद्ध दशा में पहुंचा देते। कैसी शक्ति है इनमें? कर्मों को निर्जरित करने की शक्ति। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों जब अपने जीवन में आ जाते हैं तो इनके माध्यम से एक ओर संवर भी होता है और एक ओर निर्जरा भी प्रारंभ होती है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में कहा है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। तत्वा सूत्र में बताया, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा वही करते हैं जिनके पास संयम आ चुका है। हालांकि इस सूत्र में अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी असंख्यात गुणित निर्जरा का उल्लेख है। कहाँ है कि असंख्यात गुणित निर्जरा एक अविरति सम्यक दृष्टि जीव चौथा गुणस्थान वाला भी असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा करता है, लेकिन संयमी के साथ इनकी यदि हम तुलना करते हैं तो बहुत अंतर है। यह अविरत सम्यक दृष्टि जीव एक बार विशुद्धि बढ़ाता है तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए कारणीभूत जो विशुद्धि होती है उस समय यह असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा करता हुआ सम्यक दर्शन की उपलब्धि करता है। फिर सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद कुछ कर्मों का संवर तो हुआ लेकिन प्रति समय असंख्यात गुणित रूप से पुनः जीवन में जीवनांत तक असंख्यात गुणित रूप से कर्म की निर्जरा हो जाए ये संभव नहीं है। शुरू में एक बार करता है इसलिए इनका नाम का भी उल्लेख इस सूत्र में किया है। सम्यक दृष्टि दृष्टि दृष्टिया सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक ऐसा सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा तो करता है संवर करता है निर्जरा करता है लेकिन असंख्यात गुणित नहीं। सामान्य निर्जरा तो सम्यक दृष्टि जीव के भी होती है। तात्पर्य यह है अविरत सम्यक दृष्टि हो और संयमी हो तो इन दोनों के बीच में जब हम तुलनात्मक देखते हैं तो संयमी निर्जरा के स्थान को अधिक रखता है और गुणित रूप से रखता है, परंतु अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव जो भी हो देवगति में जो भी हो यहाँ मनुष्य गति में वे सभी एक बार असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा करते हैं तो पुनः निर्जरा नहीं होती, सामान्य निर्जरा इनकी होती रहती है। जैसे संवर तो हो गया है, कितने प्रकृतियों का संवर हुआ, कितने कर्मों का संवर किया, तो कहते हैं 41 कर्मों का संवर किया, 120 तो बंद के योग्य होते हैं 148 में से, उसमें 41 कर्मों का संवर कर लेता है सम्यक दृष्टि जीव भी, इनका बंद नहीं होता, इसका मतलब संवर हो गया। 41 कौन कौन से, उनको मिथ्यात्व के उदय में बंद होने वाली जो अशुभ कर्म हैं, पाप प्रकृति हैं, उनका बंद नहीं होगा संवर होगा। और अनंतानुबंधी कषाय भी सम्यक्त्व से जीव को वंचित रखती है, इसको उपशमन किया हुआ होता है या तो क्षय किया हुआ होता है तो चौथा गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव यहाँ अनंत अनुबंधी के कारण से बंद को प्राप्त होने वाले 25 प्रकृतियों को संवर करता है, 25 और वो 16 ऐसे 41 प्रकृतियों को सम्यक दृष्टि जीव बांधता नहीं है। कितना अच्छा है, 120 में से 41 निकालो कितने रह गए, 79 रह गए, केवल 79, केवल एक सम्यक दर्शन रूपी धर्म को भी धारण करने से जीव जीव का संसार बताया ना कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। क्यों रहता है, ये जो अनंत काल तक परिभ्रमण कराने वाली अनंतानुबंधी है वो कमजोर पड़ जाती है। अनंत भव हमारा विच्छेद को प्राप्त होते हैं और केवल अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में जितने भव हैं वो सीमित हो जाते हैं। कितना अच्छा है, पहला धर्म हमारा सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन कैसा हो, 25 दोषों से मुक्त हो तो 41 कर्मों का संवर हमारे लिए अनायास रूप से प्राप्त होता है। और इसमें कोई पसीना तक नहीं आता, परिश्रम नहीं होता, मेहनत नहीं होती। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मेहनत होती है? नहीं है। क्या करना पड़ता है? तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, सच्चे देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम, सम्यक दर्शन। इतना ही करना पड़ता है और कुछ भी नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने में कोई पसीना आता है, मेहनत होता है? नहीं। अनायास सहज सच्चे को सच्चे कहो, जो सच्चे नहीं उसको सच्चे नहीं कहो। श्रद्धा किस पर करो? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर। तत्व के संबंध में भी ऐसा ही विचार करना चाहिए। जो सच्चा तत्व है उसको सच्चा कहो, जो मिथ्या तत्व है उसको मिथ्या कहो, और दोनों को समझकर श्रद्धान किस पर करो? सच्चे पर श्रद्धान करो। मिथ्या पर श्रद्धान नहीं करोगे? नहीं, करना पड़ेगा। मिथ्या है ऐसी श्रद्धा नहीं करोगे? वो श्रद्धा नहीं हो तो फिर मिथ्यात्व की ओर ही हम भागेंगे। हाँ, हटाएंगे ही नहीं। जो सच्चा तत्व है उसको सच्चा रूप से श्रद्धान करना, और जो मिथ्या है उसको मिथ्या रूप से श्रद्धान करना, और श्रद्धान के साथ साथ जिसका श्रद्धान हमने किया है वैसे ही आचरण करना। श्रद्धा के पश्चात आचरण नहीं आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा भी दो प्रकार की हो गई, सच्ची श्रद्धा और कच्ची श्रद्धा। श्रद्धा सच्ची ना हो और कच्ची हो तो हम दोनों तरफ हमारा मन भागता है, और श्रद्धा पक्की बन जाती है तो एक तरफ ही हम बहते हैं, टंकोत्कीर्ण रहते, दृढ़ रहते, अपने को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि उतना ज्ञान तो हो गया है, ये सच्चा है ये झूठा है। श्रद्धान कितना सरल है, इसमें न तो उपवास करना पड़ता है, न तपस्या करनी पड़ती है, न त्याग करना पड़ता है। क्या है इसमें? सम्यक दर्शन फ्री में मिल रहा है आपको, कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है। तो यह सम्यक दर्शन धर्म है। किस अपेक्षा से धर्म है? श्रद्धान की अपेक्षा से धर्म है, और ज्ञान भी धर्म है। किस अपेक्षा से धर्म है? सम्यक प्रकार से, यथार्थ रीति से जानने की अपेक्षा से। तत्वों को यथार्थ ही जानना, सतत ऐसा वैसा नहीं जानना, यथार्थ जानना, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही जानते रहना, उल्टा नहीं जानना, बस इतनी ही सावधानी। जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही जानना, जैसे केवली भगवान जानते। केवली भगवान अपने ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर सारे जगत को, सारे विश्व को जैसा जानते हैं वैसा ही कहते हैं, उपदेश देते हैं। जीव तीन ही प्रकार के, केवल ज्ञानी ने जाना, एकेंद्रीय जीव, विकलत्रय जीव और पंचेंद्रीय जीव। इसको कैसे जाना? केवल ज्ञान में आया ऐसा ही आया, जैसा था वैसा ही आया, और जैसा आया वैसा ही कहा। तो अपन को तो केवल ज्ञान नहीं है, जैसा है वैसा ही जानने के लिए, पर केवली भगवान ने जो कहा है जैसा कहा है वैसा मानते जाना है, इतना ही करना है। इसमें कोई परिश्रम है, त्याग है, तपस्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जैसा है वैसा जानना और वैसा मानना। केवली भगवान ने जैसा कहा है उसको वैसा ही पढ़ना और वैसा ही मानना। कुछ लोगों के मन में ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये सब धर्मशास्त्र की बात है, उसको छोड़ो, बहुत पुरानी बात हो गई। धर्म तो बहुत पुराना विषय हो गया, अभी आप वर्तमान युग में जी नहीं रहे हैं ऐसा लगता। कैसे विचार आते, किसने जाना नरक को, किसने जाना स्वर्ग को, जो है सामने दिखता है उसको मानो, खाओ पियो, आयुष आराम से रहो और निकल जाओ, ये सुख है असली सुख, इसको छोड़कर और दूसरा क्या है। वे लोग केवली भगवान के वचनों को मान नहीं सकते। वो मनुष्य गति को तो मानते हैं, त्रिरंज गति को भी मानते हैं, दो गति मानते हैं, दो गति नहीं मानते। स्वर्ग देवगति दिखता नहीं है इसलिए है नहीं, नरक कहाँ है, नरक दिखता तो है नहीं इसलिए वो भी नहीं। तो मानने वाला ऐसा मानता है तो इसमें क्या दोष आया, दोष ये आया चार कहा था केवली ने और दो मान लिया, अर्धा मान लिया अर्धा छोड़ दिया। मनुष्य गति है ये भी केवल ज्ञानी ने ही कहा है, और त्रिरंज गति है ये भी केवल ज्ञानी ने ही कहा है, इस पर तो हमें विश्वास होता है, लेकिन नरक स्वर्ग आदि पर विश्वास क्यों नहीं होता। वो दिखता नहीं है इतना ही है ना, तो जो जो नहीं दिखता है वो मानने लायक नहीं रहता है क्या, जो दिखता ही नहीं वो मानने लायक रहता नहीं है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि दो गति को मानते हैं और वो दो गति को नहीं मानते हैं तो आप जिस गति में हैं उस गति में आप कहां से आए, तो किसी न किसी अन्य गति से आए। ठीक है, अन्य गति से कहां से आए, हम दो में से एक में से आए, दो गति में से एक से आए। कहां से आए, त्रिरंज गति से आ सकता हूं या तो मनुष्य गति से आ सकता हूं। नरक से क्यों नहीं आ सकते हो, नरक को हम मानते नहीं। स्वर्ग से क्यों नहीं आ सकते हो, स्वर्ग को हम मानते नहीं। ठीक है, आप यहां आने के बाद कहां से आए, तो हमने, हमको तो माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता को किसने जन्म दिया, उनके माता पिता ने जन्म दिया, उनको किसने दिया, उनके माता पिता ने। तो इतने लंबे समय से ये माता पिता चले आ रहे हैं, उनके माता पिता भी थे, ये क्या भरोसा है। वो दिखते नहीं है ना, परोक्ष है ना, तो कैसे कहते हैं कि हमारे माता पिता के भी माता पिता थे और उनके माता पिता के भी उनके माता पिता थे, ये मान्यता कैसे बना लेते हैं आप। नहीं, हमने ऐसा बना लिया, हमारे माता पिता ने कहा था कि हम भी माता पिता से ही जन्मे हैं, और हमारे जो अजोबा थे वो भी कहते थे कि हमारे भी पिता थे, तो तुमने देखा था क्या? हमने तो नहीं देखा था, लेकिन हम मानते हैं उनको। क्यों मानते हो? देखा नहीं और क्यों मानते? अजूबा की अजूबा को देखा है क्या? नहीं देखा, फिर भी मान रहे हो। तो अजूबा के अजूबा को नहीं देखा और फिर भी मान रहे हैं, तो यही तो अजूब है। श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही मानो। हमारे भी कोई तो अजूबा है, उन्होंने कहा है, आपको मानना पड़ेगा। हमारे अजूबा तो केवल ज्ञानी है, उन्होंने कहा है, इसलिए हम भी विश्वास से मानते हैं। अजूबा का कहना बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। इसलिए हम मानते हैं। तो यदि आप अजूबा को अजूबा के अजूबा को मानते हैं, तो केवल ज्ञानी ने जो कहा है वो अन्यथा नहीं हो सकता, जो है वही कहेंगे, और जो नहीं है उसको क्यों कहेंगे? केवल ज्ञानी है तो एक सामान्य मुनि से भी विशेष है क्या? नहीं, केवल ज्ञानी। मुनि महाराज झूठ बोलते हैं क्या? बोलो, कभी नहीं। क्यों नहीं बोलते? वो तो महाव्रती है। तो झूठ बोलने से मुनि को कोई फायदा है? फायदा भी नहीं। झूठ बोलने से कोई लाभ हो तो बोला जाता है, और मुनि को क्या लाभ है? नरक है, स्वर्ग है, यह आपसे कहा उपदेश में। स्वर्ग भी है, नरक भी है, मुनि महाराज ने कहा, झूठ बोला क्या? यदि झूठ बोला तो ये है कहने से उनको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं है। और लाभ नहीं है तो झूठ कैसे बोलेंगे? झूठ वह व्यक्ति बोलता है, उस झूठ के कारण से कोई उनको लाभ हो तो बोलता है। लाभ के बिना झूठ नहीं बोला जाता। मुनि महाराज ही जब झूठ नहीं बोलते, फिर केवली भगवान झूठ बोलेंगे? ये कदापि संभव नहीं। तो फिर अपने अजूबा ऐसा नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी 24 तीर्थंकर हो गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हुई, सभी 24 लोगों ने यही कहा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, सभी लोगों ने कहा, एक मत से कहा, तो सभी लोग झूठ बोल गए 24 के 24। झूठे ठहरे क्या? नहीं, तीर्थंकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वे भगवान हैं। भगवान किसी को धोखा दे नहीं सकते। यदि भगवान भी झूठ बोल जाए, किसी को धोखा दे देते, वो भगवान कैसे? आप में और भगवान में अंतर क्या रहा? जो सामान्य व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है अपने स्वार्थवश, भगवान ऐसे उल्टे सीधे कहेंगे तो क्या फायदा उनको? ये सब विचार करने के बाद ये मानना पड़ता है कि केवली भगवान जो कुछ भी कहते हैं वह हमें मान्य कर लेना चाहिए। मान्य नहीं भी होता है तो कर लेना चाहिए, नहीं होता है तो तर्क करें, विचार करें, सब कुछ करें, किंतु मान्यता तो बनाना ही चाहिए। विदाउट मान्यता के सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक तो धर्म मान्यता पर डिपेंड है। चार कहा है तो चार को ही मानो, उसमें एक कम करके या दो कम करके मानना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। थोड़ा सा हम इधर उधर का विज्ञान पढ़ करके आ जाते हैं, पृथ्वी गोल है ऐसा मान्यता बना लेते हैं, और ये गोल पृथ्वी को छोड़कर बाहर और पृथ्वी नहीं है, ये कहां से पढ़ा अपन ने? स्कूल कॉलेज से पढ़ा। आप गए थे क्या कि पृथ्वी के बाहर पृथ्वी नहीं है देखने के लिए? नहीं, हम नहीं गए थे। तो आप कैसे बताने लगे? तो हमको मास्टर ने बताया था। मास्टर ने कहां से बताया? तो उन्होंने पुस्तक से बताया था। पुस्तक में वो कहां से आ गया? तो सरकार ने पाठ बना लिया, पाठ बन गए। तो ये पाठ कैसे बन गए? तो विज्ञानी का नाम आता है, फलाने विज्ञानी ने इतने वर्ष पहले ऐसे ऐसे पृथ्वी के संबंध में खोजबीन किया तो पृथ्वी इतनी ही दिखी, इसके बाहर कुछ है नहीं ऐसा दिखा, उस एक व्यक्ति ने कहा और सब ने माना। तो मान्यता के माध्यम से ही तो चल रहे हैं हम। ऐसा थोड़ी है कि हम पाठ में पढ़ करके हमने मान्यता बना ली तो हमने देख भी लिया है, वहां जाकर के देख करके भी आए, पृथ्वी के किनारे गए और वहां खड़े होकर के देखा, वो कुछ नहीं था, आकाश आकाश था, और यहां आए तो सबको बता दिया। ऐसा हर एक व्यक्ति क्या पृथ्वी के बाहर होकर के आता है? नहीं आता। मान्यता तो बनाते हैं हम पढ़ाई के माध्यम से, वो पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, मान्यता बन जाती है, बस वही बैठ जाता है। और फिर धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो ये तो असंख्यात द्वीप समुद्र वाला, इतना कुछ बड़ी पृथ्वी और अखंड है, कहीं भी खंडित नहीं हुआ है, अखंड पृथ्वी है, एक राजीव प्रमाण, चक चौक त्रिशनाली वाला, असंख्यात द्वीप समुद्र इसके भीतर हैं। धर्म में तो ऐसा लिखा, धर्म शास्त्रों में, और लौकिक शास्त्रों में क्या लिखा? पृथ्वी तो इतनी सी है, ऐसी गोल है, बस हो गया। तो उसको माने कि इसको माने? किसको माने? इसको माने क्या? उसको माने? इसको मानेंगे तो असंख्यात मानना पड़ेगा, उसमें से एकाध कम करेंगे तो नहीं चलेगा, जैसा है वैसा। पहले नंबर के द्वीप का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। दूसरे का नाम धातकी खंड, तीसरे का नाम पुष्करार्ध, और बीच में दो समुद्र आ गए, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र। ये नक्शा में हम देख रहे हैं, हमने देखा क्या जा करके? हम किसी को नहीं देख सकते। स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उस पृथ्वी को भी पूरी तरह से हम नहीं देख सकते। अमेरिका है क्या? नहीं, बताओ है? गए थे क्या? फिर कैसे मान लिया? जो हो करके आए हैं वो बताते हैं, तो जो हो करके आते हैं जो भी, उन्हीं की बात तो आप मानते हैं ना। तो हमारे भगवान ने भी केवल ज्ञान से सब कुछ जान लिया है, जो जाना है उसी को बता रहे हैं, इसको क्यों नहीं मान रहे? उसको मान सकते हैं तो इसको मानने में आपत्ति क्या है? इतना अविश्वास क्यों कि स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्र नहीं? एक तरफ मानते हैं और एक तरफ नहीं मानते, इधर भी मानना पड़ेगा। और फिर दोनों को मानेंगे तो ये भी काम नहीं चलने वाला। चलो दोनों मान्यता है, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, दोनों सही, इनका भी सही उनका भी सही। तो इनका तो सही है, क्या सही है? पृथ्वी है, जितना उन्होंने देखा है उतना बताया है, वो तो है, लेकिन बाहर का असंख्यात द्वीप समुद्र वाला किस विज्ञानी ने बताया? अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, और नहीं बताया इसका अर्थ ये तो है ही नहीं कि वो होता ही नहीं, है ही नहीं है। उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई, वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो छोटे छोटे कदमों से आ रहे हैं, विज्ञान के कदम बहुत छोटे होते, एक एक कदम बढ़ते बढ़ते एक एक चीज खोज लेते हैं, जितना खोज लेते हैं उतना ही बता देते हैं। तो विज्ञान की खोज क्या पूर्ण हो गई? अभी तक पूर्ण तो हुई नहीं। कल के दिन और कुछ नया खोजेंगे और उस संबंध में ही बताएंगे, उस संबंध में भी बताएंगे, तो वो भी तो होता है। जिसको उन्होंने देखा उसको उन्होंने कहा। लेकिन केवल ज्ञानी ने जो कुछ भी देखा और जितना भी कहा उसमें से हमने एक अंश भी खोजा नहीं और नहीं देखा है। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, वो भरत क्षेत्र आर्यखंड जहां बताया था वो आर्यखंड तो एक छोटा है, उस आर्यखंड में आज का पूरा विश्व आता है। गोल विज्ञानी लवण समुद्र भी नहीं पहुंचे अभी तक, विज्ञानी विजयार्ध पर्वत भी नहीं पहुंचे, विज्ञानी आसपास में रहने वाले मिलिच खंडों में भी नहीं पहुंचे, विज्ञानी पद्मरद सरोवर में भी नहीं पहुंचे, विज्ञानी गंगा सिंधु को भी देख नहीं पाया अभी, इसका मूल स्रोत कहां है? विज्ञानी विदेश क्षेत्र भी नहीं गए। इतना सारा विश्व जम्बूद्वीप में है, ऐरावत क्षेत्र उस तरफ है, पूरा एक जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा लगा करके आएंगे तो सब दिख सकता है, लेकिन विज्ञान के पास ऐसी शक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई। शक्ति जिस दिन प्राप्त होगी वो और आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा ये मिलता जाएगा, तो उस दिन आप कहेंगे अरे ये भी तो है, धर्मशास्त्र में जो लिखा था वो बिल्कुल सही है, ये भी तो है। बाद में लगेगा, लगेगा ही, आज न कल लगेगा। हम इसको तो झूठ मानते थे पहले, धर्मशास्त्र में क्या लिखते हैं, वो क्या गए थे क्या, विज्ञानी थे क्या, तीर्थंकर क्या, चंद्रलोक को ढूंढने के लिए कोई रॉकेट बना करके गए थे क्या, ऐसा विचार। चतुर्थ काल में क्या रॉकेट वगैरह थे क्या, विमान थे क्या, फोर व्हीलर थे क्या, टू व्हीलर थे क्या, मोबाइल था क्या, टीवी था क्या, ये कुछ भी नहीं था तो फिर ये सब कुछ कैसे बता दिया, ऐसा विचार करना है क्या? जो कुछ भी खोजा जाता है देखा जाता है वह सब मशीन के द्वारा ही होता है क्या? ऐसा नियम है क्या कि मशीन के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता? मशीन से भी ज्यादा अधिक ताकत वाली शक्ति जो अपने आत्मा के अंदर है, ज्ञान के अंदर है, ज्ञान की शक्ति को यदि हमने प्रकट कर लिया तो सारे विश्व को बैठे बैठे देख सकते। आप जहां बैठे हैं ना, सिद्धालय को भी देख सकते हैं और नीचे के सातवें नरक को भी देख सकते बैठे बैठे, वहां जाने की जरूरत नहीं। ये कैसे बैठे बैठे, ये तो अद्भुत बात हो गई, बैठे बैठे कैसे हम देख सकेंगे? तो ऐसा कोई ये असाध्य वाली बात नहीं। जब टीवी नहीं आया था लोग कहते थे कि दिल्ली में क्रिकेट चल रहा है और यहां घर में दिखता है, ये कैसे संभव, ऐसा भी कोई पिक्चर है क्या? पहला जब ये आया ही नहीं था टीवी वगैरह, तब यही कहते थे लोग, चित्र यहां और खेल वहां और बीच में कोई भी साधन नहीं। दिल्ली में विधानसभा में बैठे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, जैसा चर्चा कर रहे हैं वैसा ही यहां दिख रहा है लोकसभा में है? जैसा वहां चर्चा हो रही है उसी समय जिस समय जिसने जो बोला वो यहां पर साक्षात दिख रहा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं। तो एक जड़ मशीन के द्वारा ऐसा प्रत्यक्ष देखना संभव है, तो चेतन क्या जड़ से बहुत खराब चीज है क्या है? जड़ को भी चेतन ने ही तो बनाया। देखो टीवी किसने बनाया, जीव ने बनाया या टीवी स्वयं आ गई कहीं से, किसने बनाया उसको? चेतन ने बनाया। चेतन ने उस जड़ को क्यों बनाया? चेतन ने उस जड़ को ऐसा सब कुछ देखने योग्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि अपने को नहीं बना पा रहा है इसलिए उसको बनाया। ये खुद अपने को नहीं बना पा रहा है इसलिए उसको बनाया। हमारे तीर्थंकरों ने खुद को बनाया इसलिए उनको जड़ को बनाने की आवश्यकता नहीं रही। जो खुद को बना लेता है वो किसी को बनाने की आवश्यकता उनके लिए पड़ेगी नहीं। हमको खुद को बनाना है। क्या बनाना है? केवल ज्ञानी बनाना है। केवल ज्ञान के टीवी में सब कुछ, भूत का भी, भविष्य का भी और वर्तमान में भी, जहां जहां जो व्यवस्थित द्रव्य हैं, स्वर्ग नरक त्रिंच गति सिद्धालय सिद्ध परमिष्टि सर्वासिद्धि तक के सारे विषय प्रत्यक्ष दिखते, उनका भूत परिणमन उनका भविष्य परिणमन क्या होने वाला है वो सब इस टीवी में आता है, इस जड़ टीवी में वो आता है। हाँ, दोनों दिखते हैं उस। और इस टीवी में क्या दिखता है? इस टीवी में तो वर्तमान में जो चल रहा है वही दिखता है, भूत भविष्यत का क्यों नहीं दिख रहा है? भूत भविष्यत को दिखाने की शक्ति केवल चेतन टीवी में है, अचेतन टीवी में नहीं। चेतन टीवी में, अचेतन टीवी तो वर्तमान को दिखा सकेगा, चेतन टीवी तो त्रिकालिक सभी पदार्थों के परिणति को दिखा सकेगा, बता सकेगा। तो जिसके पास चतुर्थ काल में चेतन टीवी प्राप्त थी वो अचेतन टीवी की खोज के पीछे क्यों दौड़ेंगे? जरूरत ही नहीं थी उनको। उन्होंने उस काल के लोगों ने, उस काल के लोग असयमी भी थे ना, गृहस्थ भी थे, ऐसे सामान्य लोग भी थे, तीर्थंकर भी थे, मुनि भी थे, सब थे, सभी थे, किंतु किंतु लोगों ने, लोगों को तो कम से कम वो सोच सकते थे कि रॉकेट बनाए, विमान बनाए, फोर व्हीलर बनाए, आने जाने का साधन गाड़ी बनाए, ये कुछ नहीं था। मशीन थी नहीं, गाड़ी घोड़ा घोड़े को जोतते थे, रथ में बैठते थे, जाते थे। यात्रा के साधन ये थे। मशीन नहीं बनाया। कहीं पास में जाना हो आना हो तो ये साधन था। बहुत दूर जाना हो, जैसे सुमेरु पर्वत है, वहां पर कृत्रिम चैत्यालय है, पूजा करने की, दर्शन करने की भावना हो गई और वहां पर जाना आवश्यक पड़ गया तो रॉकेट बनाया? नहीं बनाया। तो क्या किया उन्होंने? दूरस्थ प्रदेशों को जाने के लिए आसानी से उनको विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। विद्याएं कैसी? विद्या आकाशगामिनी विद्या। किसको? एक चोर को भी। एक चोर को भी विद्या सिद्ध हो जाती है। कौन सा चोर? अंजन चोर। परिचित हैं आप उन लोग, रहे होंगे उस समय। अंजन चोर से बहुत लोग परिचित हैं। हाँ। अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई। किस मंत्र से हो गई? नमोकार मंत्र से। बोलो, भौतिक सिद्धि भी नमोकार मंत्र से संभव है और परमार्थ सिद्धि भी नमोकार मंत्र से संभव है। यदि कोई नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो परमार्थ की सिद्धि करता है। सम्यक दर्शन एक परमार्थ वस्तु है और विद्या एक भौतिक वस्तु है। लेकिन ये सभी विश्वास के बिना होता है क्या? विश्वास के बिना नहीं होता। विश्वास करना ही पड़ेगा। किस पर विश्वास? जिसके द्वारा हम जिस चीज को सिद्ध कर रहे हैं, जिसके द्वारा कर रहे हैं, उस पर पहला विश्वास करना पड़ता है। तो क्या है वो मंत्र? नमोकार मंत्र। इस नमस्कार मंत्र में कौन है ये भी पता नहीं था। किसको? अंजन चोर को। उच्चारण भी नहीं कर पाता था। उच्चारण भी नहीं कर पाता था। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता था उसको सुन करके ऐसा लगा उनको, ये क्या आड़म ताड़म कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जरूर कोई चीज है वो जिसके माध्यम से वो कुछ पाना चाहता है। ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है। उसने पूछा कि क्या करते हो ये? उनने कहा ये मंत्र है नमोकार मंत्र और इससे आकाश में जाने की शक्ति आती है। आकाश से जाने की शक्ति आती है, सिद्ध होता है। ये विद्या सिद्धि के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उस चोर ने सोचा ये फिर प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं ऊपर जाकर यदि सभी उन रस्सियों को काट लूंगा और नीचे आ गया और मंत्र सिद्धि नहीं हुई तो मेरे प्राणों का क्या होगा? कौन बचाएगा? तो वास्तव में इसके माध्यम से क्या विद्या की सिद्धि होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ये क्या चीज है फिर? ये तो मंत्र है। कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र। किसने दिया? किसने दिया पूछने पर उन्होंने नाम ले लिया, जिसने दिया था उनका। उनका नाम लेते ही अंजन चोर को विश्वास आ गया। यदि वह व्यक्ति आपको दिया है, यदि उस व्यक्ति ने दिया है तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं, ये कोई मंत्र बिल्कुल दमदार है और इससे कुछ हो भी सकता है। लाओ इधर, मैं देख लेता हूं। नमोकार मंत्र, तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये तो अपने वश की बात नहीं है, इसका उच्चारण भी मुझसे बनेगा नहीं और कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने दिया है वो मेरे लिए विश्वास की योग्य है, उसने ही दिया है तो देख लेता हूं, वहीं पर जाकर के देख लूं। पेड़ चढ़ जाता है, वहां पर बैठ जाता है, रस्सियों को तलवार से काट लेता है, आड़म ताड़म कछु न जानम, मुझे कुछ नहीं मालूम। हे शेठ जी, तुमने जो कहा है उसके माध्यम से विद्या सिद्ध होगी ही होगी, लेकिन तुमने जो दिया है वो मुझे बोलना भी नहीं आता, लेकिन जो है उस पर मुझे ठोस विश्वास है, मेरे प्राण भी चले जाए कोई बात नहीं, पर मैं विश्वास को डिगा नहीं सकता। मैं आपके नाम से दीवाना बन गया और आपके द्वारा दिया गया यह मंत्र मुझे विद्या सिद्ध करने के लिए कारण बनेगा, लेकिन मंत्र बोलना नहीं आया उसको, इतना ही कहा काटते समय, आड़म ताड़म कछु न जानम। नमोकार मंत्र का उच्चारण नमो अरंतान नमो सिद्धा, वो आड़म ताड़म सुनाई देता था उनको, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, सेठ वचन प्रमाणम भी बोलना नहीं आया, सेठ वचन परमाणु, वो तो परमाणु बम है, कुछ भी हो सकता है, सेठ वचन परमाणु, इतना कहा और सभी ऋषियों को काट दिया और गिरते समय विद्या ने आकर के संभाल लिया, हाथ जोड़ करके उस विद्या ने कहा आपको जाना कहाँ है बताइए, तो मुझे कहीं भी जाना नहीं था, मुझे देखना था कि विद्या प्राप्त हो सकती है क्या नहीं, और विद्या देखने के लिए जब गया तो विद्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो मुझे सबसे पहले वहां ले चलो जिसकी कृपा से यह विद्या सिद्ध हो गई, ये विद्या सिद्ध हो गई वहां ले चलो। कहां थे वो सेठ जी? वो रोज रोज जाते थे, सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैतालयों की पूजा दर्शन के लिए जाते थे वो, और वहां चले गए थे, आए नहीं थे, और यहां भरत क्षेत्र से वो विद्या से कहा कि हमको सेठ जी के पास ले चलो, तो विद्या ने पल भर में ले जाकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचा दिया। जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचा, अंजन चोर अंदर से सेठ जी पूजन संपन्न करके बाहर आ रहे थे, आकर के दरवाजे के सामने खड़े रहे और एक नए व्यक्ति को देखा, ये कौन आया? अरे ये तो चोर जैसा लग रहा है, इधर कैसे आ गया ये? अद्भुत बात। और चोर भी उस सेठ जी को देख रहा है, देख करके बड़े हर्षित परिणामों से, हर्षित भावों से जा करके सबसे पहले सेठ जी के चरण छुए और जय जिनेन्द्र बोला। क्या बोला? क्या नमोस्तु? जय जिनेन्द्र बोला और कहा हम आ गए आपके कारण से, आपके वजह से हम यहां आए। अरे तुम तो चोर, इधर कैसे आ गए? कौन सा साधन तुमको मिल गया? तो उन्होंने कहा आपने जिसको जो दिया था वो मुझे मिल गया प्रसाद, और उस प्रसाद के कारण आज मैं यहां तक आया। तो समझ गए हो, मैं आते समय कल के दिन उस व्यक्ति को जो मंत्र सुनाया था और विद्या सिद्ध करने की विधि बताई थी, वही विधि शायद लगता है इसको लग गई। मन में सोचा उन्होंने, वही मिल गया होगा। पूछा किसने दिया तुमको, तो उन्होंने दिया, तो पता चल गया हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम एक चोर हो यहां तक आए। नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास करने मात्र से इतनी बड़ी विद्या तुमको चोर होकर के भी उपलब्ध हो सकती है, तो इससे भी बढ़कर के तुम्हारे द्वारा कोई काम और हो सकता है, क्या तुम करोगे? सेठ जी, सेठ पूछ रहा है चोर से, तो सेठ जी के प्रति तो बिल्कुल दीवाने थे, आपकी अनुकंपा से यह आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो सकती है, तो इससे भी बढ़कर के कोई विद्या है क्या? हाँ, उससे भी बढ़कर के कोई विद्या है तो तुम्हारे लिए मिल सकती है। देखो ये सभी नमोकार मंत्र का ही महिमा है। चोर को विद्या सिद्ध हो गई और वह सेठ उससे बोल रहा है ये तो भौतिक विद्या है, इससे भी बढ़कर के एक परमार्थ विद्या होती है, उसको यदि तुम सिद्ध कर लोगे तो तुम भगवान बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो। तत्काल उसकी इच्छा प्रबल हो गई और उसने कहा कि यह कैसे प्राप्त हो सकती, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं दिला देता हूं उसको। और वहां सुमेरु पर्वत के बड़े बड़े चट्टानों पर चारण रिद्धि मुनि जो दर्शन के लिए आते थे, एक मुनि महाराज वहां पर विराजमान थे आकृत्रिम चैताले के पीछे। रिद्धिधारी मुनि के पास उस चोर को सेठ ले जाता है और मुनि महाराज से निवेदन करता है, महाराज यह एक भव्य जीवात्मा आया हुआ है आपके चरणों में, यह बड़ा भाग्यशाली है और शारीरिक शक्ति से भी मजबूत है, ये कुछ भी काम कर सकता है। शारीरिक शक्ति से इतना मजबूत था वो कि अगर सुमेरु पर्वत से कहीं गलती से गिर भी जाए तो चट्टान चूर हो सकता था, ऐसा था चोर। लेकिन उनकी हड्डी में कहीं भी क्रैक, हड्डी टूट नहीं सकती थी, इतना मजबूत शरीर था, तो कौन सा सवनन रहा होगा? वज्रुषव नारासनन था। देखो तो वज्रुषव नारासनन धारी मनुष्य होना कितना दुर्लभ, भाग्यशाली को मिलता है, और ऐसे सनन को पाने के बाद भी एक चोर बनकर के चोरी का काम करना। वज्रुषव नारासनन धारी व्यक्ति चोरी कर सकता है? चोरी कर सकता है? एक मुट्ठी से कहीं चट्टान पर मार दे तो पानी निकल आता, इतनी ताकत, और चोरी करके पेट भर रहा। अंजन चोर चोरी नहीं करता था, चोरी एक व्यसन, व्यसन वो कहलाता है नहीं करना है लेकिन फिर भी करना है, करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी करने को मन कहता है इसलिए कर रहा है, इसको व्यसन कहते। जंगल में जाकर शिकार खेलना कोई फायदा है क्या? लेकिन खेलना है इसलिए खेलने के गए हैं और रोज जा रहे हैं और आदत पड़ गई। आदत का नाम व्यसन है, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती लेकिन फिर भी उस काम को जो हम आदतवश करते रहते हैं उसका नाम व्यसन कहलाता है। व्यसन त्याग दिया उन्होंने, सेठ जी के चरण छुए और व्यसन का त्याग कर दिया। और व्यसन को छोड़ो लेकिन और भी कुछ छोड़ना है वो भी तुमको बता देता हूं, आ जाओ। गुरु के पास ले गए, पंच महाव्रतों का उपदेश दिलाया। देखो आत्मा परमात्मा तुम्हारी भी बन सकती है, तुम बड़े भाग्यशाली भव्यात्मा हो और यदि तुम अपने परिवार को, परिग्रह को, घर को, सबको, देश को भरत क्षेत्र लौट के नहीं जाओगे, यहां से सबको त्याग दोगे और मैं जैसा दिखता हूं ना वैसा ही बन जाओगे तो तुम्हारे लिए अद्भुत शक्ति केवल ज्ञान विद्या, परमार्थ विद्या, ये भौतिक विद्या है जो तुम्हारे लिए आकाश से चलने में, ले जाने में सहयोग करती है। लेकिन यह परमार्थ विद्या, केवल ज्ञान की विद्या अगर प्रकट हो जाएगी तो तुम भगवान बन जाओगे। मुनि के उपदेश को सुनकर केवल ज्ञान क्या होता है ये भी मालूम नहीं था, लेकिन ये सेठ जी के गुरु हैं और सेठ जी ने अपने गुरु के पास जब मुझे ले आकर के इस प्रकार का उपदेश दिला रहा है तो गुरु के वचन तो और भी झूठ नहीं निकल सकते। केवल ज्ञान कुछ भी हो उससे क्या मतलब, लेकिन गुरु जो कहते हैं उसको स्वीकार करना बहुत फायदाजनक रहेगा। देखता हूं गुरु के विश्वास से दिगंबर मुनि दीक्षा हो गई, दिगंबर मुनि बन गए। फिर गुरु ने कहा देखो मन में राग द्वेष नहीं करते हुए, राग द्वेष क्या होता है वो भी मालूम नहीं, मन में कहीं किसी बाह्य वस्तु के प्रति आकर्षित न होते हुए, हाँ ये तो समझ में आता है, क्या करना बोलो, किसी भी पदार्थ से आकर्षित नहीं होना और अपने मन को इच्छाओं से मुक्त रहना रखना। इच्छा जानते हो? हाँ इच्छा तो जानता हूं, मुझे वहां जाने की यहां जाने की इच्छा होती है, मन चंचल रहता है ये तो जानता हूं, बस इतना ही समझो। इच्छाओं से मुक्त रहना, कोई भी किसी पदार्थ की इच्छा न रखते हुए चुपचाप बैठना। फिर क्या करना, करने का पूछते हो, कुछ भी नहीं करना यही करना। बैठना आता है कि नहीं? हाँ बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं करना यही करना, किसी की इच्छा नहीं करना यही करना। तो इच्छा मुक्त होकर के अंतर मुहूर्त के लिए ऐसा ध्यान लगा के बैठ गए अंजन चोर और उनको अंतर मुहूर्त में मुनि के सामने ही, गुरु के सामने ही जिससे दीक्षा ली थी उनके सामने ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अरहंत बन गई चोर। और कुछ क्या कहना, उनकी आयु भी उतनी ही थी। कैसा योग, भरत क्षेत्र से सुमेरु पर्वत चले गए अरहंत बनने का योग और उनकी आयु भी उतनी ही थी और वे अंतर मुहूर्त काल में केवल ज्ञान को प्राप्त किए। जहां केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी को देख करके वे गुरु उनके पास गए होंगे ना। उनके पास गए तो होंगे ना, क्या किया होगा जाकर के शिष्य को गुरु नमोस्तु बोलेंगे और शिष्य गुरु को क्या करेंगे, अरहंत भगवान ऐसे कहेंगे सद्धर्म वृद्धि रस्तु। अरहंत ऐसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, वो चुपचाप बैठेंगे, न राग न द्वेष, अपने आत्मा के भीतर अनंत अनंत द्रव्यों को अवलोकन करते हुए वीतराग मुद्रा में विराजमान रहेंगे। गुरु तीन प्रदक्षिणा देकर हमारे उपदेश से ये चोर भगवान बन गया, धन्य है। हमको क्यों केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है अभी? ऐसा कोई नियम थोड़ी है मोक्ष जाने का, केवल ज्ञान होने का, कि शिष्य को बाद में ही होता है और गुरु को पहले ही होता है केवल ज्ञान। ऐसा कुछ भी नियम नहीं, नियम नहीं है। शिष्य गुरु के शिष्य, शिष्यों के शिष्य और उन शिष्यों के शिष्य भी हो तो उनको भी पहला केवल ज्ञान हो सकता। मोक्ष मार्ग में ऐसा थोड़ी है कि हम आकर के यहां पहले बैठे थे, हमको केवल ज्ञान पहला होगा, ऐसा कुछ भी शर्त नहीं होता। जैन धर्म जीतने का धर्म, जो जिस समय जीत गया, जीत गया, वो बन गया। और जिसको जीतने में समय लग रहा है, उनको समय लग रहा है, उनको बाद में ही केवल ज्ञान आदि होगा। कैसा है यह मार्ग, चोर को भी केवल ज्ञान हो सकता है, बताइए। लेकिन चोर उस समय रहा क्या वो है? शेठ जी के पास जब वो चले गए और चोरी का त्याग कर दिया तो वो चोर थोड़ी है, वो तो भूतपूर्व चोर है। भूतपूर्व वर्तमान की, वर्तमान पर्याय की महत्ता होती। भूतकाल में हमने कितना अपराध किया है, क्या क्या पाप किया है, इसका कोई महत्व नहीं। वर्तमान पर्याय की जानकारी हमें अच्छी तरह से मिल जाए और वर्तमान पर्याय को सुधार लें तो निश्चित है हम केवल वर्तमान पर्याय के बल पर ही सब कुछ काम कर सकते हैं। भविष्य में कोई पाप नहीं होता, भविष्य तो निर्लेप है। भविष्य न पाप से युक्त है न पुण्य से युक्त है। वर्तमान पर्याय को जिस ओर हम मोड़ देते हैं उस दिशा में वह पर्याय आकार धारण कर लेते हैं। चोर थे, अब सद्गृहस्थ हो गए, सम्यक दृष्टि गृहस्थ। अब सम्यक दृष्टि गृहस्थ थे, अब वो महावृति मुनि, मुनि महाराज हो गए। अब मुनि महाराज थे, अब वो अरहंत भगवान बन गए। अभी अभी अरहंत भगवान थे और अंतर मुहूर्त में ही उनको उस सुमेरु पर्वत के पीछे बैठकर एक चट्टान पर अकृत्रिम चेतनालय के पीछे उन्होंने ध्यान किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी अंतर मुहूर्त में आठों कर्मों को नाश करके सिद्ध परमिष्टि बन गए। वे चोर नमोकार मंत्र में आ गए, नमोकार मंत्र में टॉप लेवल पर बैठ गए, शिखर पर बैठ गए नमोकार मंत्र में। हम उस चोर को भी नमस्कार करते जो भूतपूर्व थे लेकिन वर्तमान पर्याय को सुधार दिया था। वो वर्तमान पर्याय में आज भी अंजन चोर किस रूप में है? सिद्ध परमेष्टि के रूप में है, सिद्ध परमेष्टि के रूप में है। अब वो अंजन चोर लौट कर कभी भी न भरत क्षेत्र में आएंगे, न विवेक क्षेत्र में आएंगे, ये कहीं भी नहीं उतरेंगे, अनंत 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 काल तक वहीं रहेंगे। ऐसी कितनी आत्माएं मोक्ष गई, कितनी कितनी आत्माएं अपने अपराधों को त्याग कर, अपनी आदत को सुधार कर, वर्तमान पर्याय को महत्व देकर के वर्तमान पर्याय में अपने जीवन को सुधार लिया, ऐसी कितनी आत्माएं हुई अनंत। ये अनंत जो जा चुके हैं ये लौट करके कभी आएंगे क्या? वो आने लग जाएंगे तो संसार कभी ये खाली होने वाला ही नहीं है, वैसे ही खाली नहीं होने वाला है। वो नए भी आते हैं तो भी खाली होने वाला नहीं है। खाली करके बता सकते, खाली करके बता सकते हो नहीं? ऐसे कैसे महाराज, अनंत है तो आज न अनंत काल तक ये मोक्ष जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। वो भी जाने का काल भी अनंत और जीव भी अनंत, तो जाने के काल अनंत है तो फिर ये एक न एक दिन खत्म तो होंगे, हो जाएंगे क्या? यदि फिर भी कहते हैं कि हो जाएगा, ये सब होने में कोई संदेह नहीं, सभी भव्य अभव्य सब जीव एक न एक दिन वो भी अभव्य भी भव्य बनेंगे और वो भी मोक्ष जाएंगे, ऐसी भी कल्पना करने वाले लोग हैं और ऐसी भी कल्पना करते हैं कि सभी लोग दीक्षा लेंगे तो आहार कौन देगा? सभी लोग सिद्ध परमेष्टि बन जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? तो संसार में रहने की चिंता है, कोई न कोई को रहना पड़ेगा यहां। तो जो पूछ रहा है ना कि संसार में कौन रहेगा, तो कम से कम वो तो रहेगा ना। सब लोग चले जाए तो पूछने वाला तो कम से कम रहेगा। यह संसार यदि खाली हो सकता है तो करके बताइए, मोक्ष किस गति से होता है? मनुष्य गति से होता है, यहीं से द्वार है जाने का, इसी द्वार से गुजरना पड़ेगा। कहां कहां से आकर? ऊपर से आकर, नीचे से आकर, आजू बाजू से आकर, त्रिरंच गति से आकर, यहीं से जाना पड़ेगा ना। चलो चार ही गति है, खाली करके देखते हैं होता है कि नहीं। चार ही गति है और भव्य जीव मोक्ष जाते हैं। चलो पहले भव्यों को खाली कर दो, चारों गति में भव्य रहते हैं, सभी मनुष्य गति में आए, पहला त्रिरंच गति खाली हो गया भव्यों से, मनुष्य गति खाली, देव गति खाली हो गया, नरक गति भी खाली हो गया। अब इन चार तीन गतियों में अभव जीव बचे, उनको भी मोक्ष होता है कि नहीं? नहीं होना ही तो चाहिए महाराज, ऐसे कैसे, वो भी तो जीव हैं। ठीक है, उनको भी भेजो, संसार खाली करके बताना। संसार को बिल्कुल एक भी जीव यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके बताना है, बताओ। चलो आप कहते हैं तो भव्य जीवों को भी मोक्ष भेज दो, चारों गति में भव्य जीव अभव्य जीव थे और वो भी मनुष्य गति में आकर के चारों गति से तीनों गति के जीव यहां आकर के मोक्ष गए 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 सब गए, एक परिवार बच गया अभव्यों का। उस परिवार में कितने लोग हैं? चार लोग हैं। चार लोग कौन? एक दो बेटे हैं, माता पिता दो हैं। इसमें किसको मोक्ष होगा? बेटे को हो सकता है, पिता को हो सकता है, माँ को और बेटी को क्यों नहीं होता? स्त्री पर्याय। तो स्त्री पर्याय से मोक्ष होता नहीं, ये गारंटी है? क्या होता है ऐसा? है यदि होता है कहेंगे तो खाली हो जाएगा, और नहीं होता है कहेंगे तो फिर दो तो रहेंगे। पुरुष पर्याय से मोक्ष होता है गारंटी, वो तो चले गए। स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता है ये अगर मानते हैं आप, ठीक है। ये दोनों कहां जाएंगे? ये देवगति में जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि थी दोनों, और सम्यक के कारण से देवगति चले गए। अब वहां भी रुपये आयु है, आयु खत्म होगा, मरण भी होगा, मरण हो गया, अब कहां जन्म लेंगे? मनुष्य गति में आएंगे। कहां पर आएंगे? कोल्हापुर तो खाली है पहले से ही, और फिर भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र जितने हैं, मनुष्य पर्याय के सारे मनुष्य जा चुके हैं मोक्ष, और फिर उनको कहां उतारोगे? दोनों को, वो तो दो अटक गए ना वहां, उनको कहां जन्म कराओगे? और जन्म होने के लिए कोई ना कोई दो चाहिए, और यहां है ही नहीं, सभी मोक्ष गए। यहां आएंगे तो कोई कहेगा इधर क्यों आए, यहां पर कोई नहीं, सभी गए, आप कैसे आ रहे हैं लौट करके यहां? यहां मनुष्य ही नहीं है तो उसको जन्म कहां कराएंगे? मान के चले स्त्री पर्याय से मोक्ष भी होता है, लेकिन गारंटी थोड़ी है। कितने ही मनुष्यों को वज्र शिव नारासन मिलता तो है, लेकिन नरक भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर मान लो चूक गए, वज्र शिव नारासन मिलने के बाद भी चूक गए और स्वर्ग में जाकर के अटक गए, फिर उनको संसार से मुक्त करने का कौन सा उपाय? इसलिए केवली भगवान ने कहा संसार कभी खाली होता नहीं। जब देखो तब अनंत जीव बने रहेंगे। अनंत किसका नाम है? जिसका अंत भी नहीं, आदि भी नहीं, मध्य भी नहीं, उसका नाम अनंत है। अनंत संख्या खत्म हो जाए तो फिर वो संख्या अनंत नहीं है। अगर खत्म हो गया तो फिर वो अंत है, अनंत नहीं। वो अंत वाली संख्या है, अनंत की संख्या नहीं। ये संसार कभी खाली होने वाला है ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। परंतु मोक्ष जो जाएंगे वो भी लौट करके भी नहीं आएंगे, ये भी बात है। पर जो भी जाएंगे इसी में से जाएंगे, पर जाते 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 कभी खाली हो जाए ये कभी संभव नहीं। इसीलिए इसको अनंत कहा है, अनंत कभी खाली नहीं होता। हम खाली हो सकते हैं संसार से, हम व्यक्तिगत खाली हो सकते हैं, यहां से जगत छोड़ सकते हैं, लेकिन अनंत संख्या को ये बता दो कि कभी न कभी खत्म तो हो जाओ। अनंत संख्या कभी खत्म नहीं होती, उसी को अनंत कहते। जैन धर्म कब से है, नमोकार मंत्र कब से है, सब अनादिकाल से। अनादि का क्या अर्थ है? अनंत काल। जो गया है वो भी अनंत है, जो आने वाला है वो भी अनंत है, और हम बीच में हैं। और हम बीच में हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत का मध्य नहीं होता, ये भी कहा। अभी तक इस संसार से कितने संसारी जीव मोक्ष गए, ये जब प्रश्न आता है तो आगम में जिनेन्द्र भगवान ने इसका भी उत्तर दिया है। अभी तक जो गए हैं कितने गए हैं, तो कहा आप लोगों ने निगोदी जीवों का कथन सुना है ना। निगोदी जीव एक प्याज है, प्याज कांदा जो आप खाते नहीं, खाते हाँ नहीं खाना चाहिए, आपका त्याग रहता है खाते नहीं, क्योंकि दयालु है, मोक्ष जाना है इसलिए नहीं खाते, अब खाना भी नहीं चाहिए। मोक्ष जाना हो तो कांदा नहीं खाना चाहिए, हाँ वो भी स्वार्थ है। जो वो कांदा जमीन में कांदे, उस कांदे के भीतर एक सुई चुभो दो और उसका रस चिपक करके बाहर आ जाएगा सुई के ऊपर, उससे सब बादर निगोदी जीवों का शरीर चिपक करके बाहर आएगा, और उस सुई पर अनंत बादर निगोदी शरीर हैं सुई के ऊपर। शरीर संख्या कितनी? अनंत। और एक शरीर में अनंत जीव हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं, तो पूरे प्याज में कितने शरीर हैं? एक प्याज में। अब दुनिया में कितने प्याज हैं, कितने गणंत वस्तुएं हैं, सोचो। भगवान ने बताया है, ये असत्य नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। एक सुई के चुभने से जितने उसका रस के कण लग गए उसमें बादर निगोदी जीव बाहर आ गए, और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं, उसमें उस सुई के ऊपर जो अनंत शरीर हैं उसका एक शरीर बाजू ले लो, उसमें कितने जीव हैं? अनंत हैं। उसका अनंत व अंश सिद्ध परमेष्टि है। आज तक जितने मोक्ष गए हैं ना, हाँ ये कहा है, एक निगोदी जीव के शरीर में जो अनंत आत्माएं हैं उनके अनंत व अंश भी वो अनंत है, उतने सिद्ध भगवान आप आज तक संसार से मुक्त हुए जीव हैं, जीवों की संख्या उतनी है। आप करो खाली, कितनी आत्माएं हैं, कितनी जीव हैं, कैसे जन्म मरण कर रहे हैं, देखो तो। एक शरीर में अनंत आत्मा, एक श्वास लेता है तो सबको श्वास मिलता है, एक जन्म ले रहा है तो अनंत एक साथ अनंत झुंड आ रहा है जन्म लेने के लिए। एक शरीर में प्रवेश, सबके आयु का बंद वहीं से हुआ है जहां जिस गति से भी आ रहे हों। कोई मनुष्य गति से आ रहा है, कोई त्रिंच गति से आ रहा है, देव गति से तो नहीं आ सकता, निगोदी नहीं बनता। देव गति से आकर प्रत्येक वनस्पति बनता है, साधारण वनस्पति नहीं बनता। कोई त्रिंच गति से आता है नरक से भी नहीं आ सकता, क्योंकि नरक से आने वाला जीव नियम से पंचेंद्री ही बनता है, एकेंद्री नहीं बनता। पांचों स्थावर कायिक और विकलत्रय में नारकी जीव आकर के यहां जन्म नहीं ले सकता। देवगति वाला देखो अच्छे स्थान पर एकेंद्री, अच्छे स्थान से आकर के एकेंद्री बन सकते, लेकिन बुरे स्थान से आकर पंचेंद्री बनने का भाग्य है, योग है, लेकिन स्थावर कायिक और विकलत्र नहीं बन सकता। संगी पंचेंद्री बने, असंगी भी नहीं बनेगा। संगी पंचेंद्री ऐसा ही योग है। तो फिर सोचो अच्छे स्थान से हम आकर एकेंद्री बन सकते हैं, नरक से आकर के हम क्या नहीं बन सकते, विकलत्रय भी नहीं बन सकते, विकलत्रय में नहीं आ सकते, एकेंद्री में नहीं आ सकते। अनंतानंत जीव दो गति से आते हैं, मनुष्य गति में संख्यात मनुष्य, निबोध जाने वाले बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा निबोध जाते ऐसा नहीं। चारों गति में बंटवारा होता है मनुष्य गति से, 84 लाख योनि सब खुले, सब जगह जाता है मनुष्य, तो निबोध जाने वाले कितने मिलेंगे। संख्यात वैसे ही है, भोग भूमि के मनुष्य स्वर्ग जाते हैं, अन्य गति तो है ही नहीं। कुभोग भूमि के मनुष्य भी स्वर्ग ही जाते, अन्य गति में तो जाते नहीं। मलेच्छ खंड के जीव कितने गतियों में जाते, चारों गति में जाते। और आर्य खंड के मनुष्य सब जगह जा सकते, सब जगह, सभी जगह जाने का मालिक आर्यखंड का मनुष्य, ये मोक्ष भी जा सकता है, सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है, नरक के सारे स्थान पूरी कर सकता है, निबोध जा सकता है, द्विइंद्री तीनइंद्री चतुरइंद्री पंचेंद्री संगी असंगी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सूक्ष्म बांदर सब में मनुष्य सब जगह जा सकता है। कितने जाएंगे उस शरीर में, कुछ मनुष्य जा करके निगोद में पैदा होते हैं, तो कुछ आत्मा यहां से आई और कुछ आत्माएं, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं त्रिरंच गति से आकर के उस शरीर में जन्म लेते हैं और एक साथ अनंत जीव एक शरीर में आ रहे हैं, पैदा हो गए, श्वासोश्वास शुरू हो गया, तो एक श्वास लेता है तो सबको श्वास मिल रहा है, एक श्वास छोड़ता है सभी अनंत जीव श्वास छोड़ रहे हैं, एक का मरण हो गया तो पूरे सब मर गए, और सब मर गए तो अनंत जीव निकले विग्रह गति से, अनंत जीव विग्रह गति से निकले, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई सब स्वतंत्र हैं, कोई मनुष्य गति में जा रहा है, कोई और किसी गति में जा रहा है त्रिंच गति में, लेकिन ये स्वर्ग तो नहीं जाएंगे ना, निगोद जीव मर करके स्वर्ग जाएगा, निगोद जीव मर करके नरक जाएगा, नहीं जाएगा। त्रिरंच गति या तो मनुष्य गति आए दो से, दो गति से, और मरण के पश्चात जाना भी दो गति में, निगोद से आकर मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से जाकर निगोद में पैदा हो सकता है। अब देखो एक साथ अनंत जीव आते हैं और छूटते समय अनंत छूटते, उसमें से अनंत व अंश जीव, कुछ जीव उसमें से आज तक मोक्ष गए हैं, मोक्ष में कुछ संख्या है ही नहीं, और ये नियम है 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, वो भी 2.5 द्वीप से, तीन लोक में कहीं भी जाने का रास्ता नहीं, यहीं पर आना पड़ेगा। ढाई द्वीप में आर्यखंड में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य ही बनना पड़ेगा, वज्रषभ नारा सनन प्राप्त करना पड़ेगा। कितनी दुर्लभताएं हैं ये सब है? पंचम काल हाँ भले ही हो, यहां भी पैदा हो सकते हैं निगोद से आकर, पर मोक्ष जाने के लिए तो सनन चाहिए पड़ेगा ना, वज्रषभ नारा सनन चाहिए। ऐसा चिंतन करो संसार का, सब खुल करके सामने आएगा, अपना जीवन क्या है और कितना है और कैसे है, हम किधर भाग रहे हैं, किधर भागना चाहिए। टाइम पूरा हो गया, जिनवानी Thank you.